ओम शांति। आज का विषय है ब्रह्मा बाप समान सूक्ष्म वतनवासी बनने का पासपोर्ट और वीजा। आप सभी जानते हैं कि जैसे कि हमारे मीठे बाबा, मीठे ब्रह्मा बाबा, जिनको कल 48 वर्ष पूरे हो गए सूक्ष्म वतन में रहते हुए। कितने वर्ष पूरे हो गए? 48 वर्ष से ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतनवासी हैं। जैसे एक तो होता है वीजा, जैसे होता है ना, एक तो होता है टूरिस्ट वीजा, एक होता है परमानेंट वीजा, ना? बाबा का तो वीजा कैसे है? बाबा ने 33 वर्ष में, 1936 में जब शिव बाबा की पधरामनी हुई ब्रह्मा बाबा के अंदर, और तब से लेकर के 1969 तक उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, दिन रात पुरुषार्थ किया, और उन्होंने क्या बना लिया अपने आप को? सूक्ष्म वतन वासी बना लिया। और तब से लेकर के आज तक, 18 जनवरी 1969 से लेकर के और अभी तक, बाबा हम बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए सूक्ष्म वतन में बैठे। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम सभी ब्रह्मा बाप समान सूक्ष्म वतनवासी बन जाए। हम सबको बनना तो है ना, जो सूक्ष्म वतनवासी बनना चाहते हैं हाथ उठाएं। वेरी गुड, सभी बनना चाहते हैं। तो कैसे, सूक्ष्म का मतलब क्या है? सूक्ष्म के दो अर्थ हैं। सूक्ष्म, एक सूक्ष्म का अर्थ है पवित्र, शुद्ध, और दूसरा सूक्ष्म का अर्थ है जो नजर ना आए आंखों से। स्थूल नजर आता है, सूक्ष्म नजर नहीं आता है। ये सूक्ष्म वतन है क्या चीज, आप सभी ने सुना है, समझा है, बाबा की अव्यक्त मुरली में सुना है सूक्ष्म वतन के बारे में, कई बार साकार मुरलियों में भी कभी कभी आता है कि सूक्ष्म वतन में जो कारोबार है वो शुद्ध संकल्पों की होती है। वहां सिर्फ शुद्ध संकल्प ही पहुंच सकते हैं, और सारी कारोबार ही शुद्ध संकल्पों की है। वाइसलेस, जितना जितना हम वाइसलेस बनते जाते हैं तभी हम पहुंच सकते हैं सूक्ष्म वतन में। अगर हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखें, ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ कोई बाबा के आने के बाद शुरू नहीं हुआ। अगर हम बाबा की डायरी पढ़ते हैं, मधुबन में रखी है, हम लोगों ने वो डायरियां पढ़ी हैं बाबा की, दादी लच्छू दादी हमें दिखाती थी बाबा की डायरी, और हमने देखी है। तो बाबा 1932 में, 33 में, 34 में जो बाबा की डायरी, पर्सनल डायरी थी, बाबा अपने मन से बात करते थे, अपनी बुद्धि से बात करते थे। जो हम आज भी हम पुरुषार्थ में परफेक्ट नहीं हुए हैं, ब्रह्मा बाबा का वो पुरुषार्थ 1932 में था। मैं आत्मा हूं, मन बुद्धि से बात करते थे, आप सबने भी सुना हो शायद। तो कैसे बाबा ने, कैसे अपने आप को इसके लायक बनाया, अगर हम उसको देखें। पहले मैं पासपोर्ट की बात करता हूं, ठीक है? सभी को पासपोर्ट चाहिए या सभी के पास ऑलरेडी पासपोर्ट है? सूक्ष्म वतन जाने का पासपोर्ट है कि नहीं है? जिनके पास पासपोर्ट है हाथ उठाओ, ऑलरेडी पासपोर्ट ले चुके हैं, बाकी को लेना बाकी है। चलिए हम बात करते हैं, आप चेक कर लेना अपने आप कि सूक्ष्म वतन वासी बनने के लिए पासपोर्ट में क्या 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 बातें हैं। जैसे आपको पता है, स्थूल में भी अगर पासपोर्ट लेते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या चाहिए होता है? अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, हम कहाँ रहते हैं रेजिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और प्लस हमारा पुलिस रिकॉर्ड ठीक ठाक होना चाहिए, है ना? अगर कहीं भी कोई क्राइम किया हो, कहीं पुलिस केस हो, कहीं कोर्ट में केस हो, तो हमें पासपोर्ट नहीं मिल सकता, है ना? ऐसे ही कुछ नियम है पासपोर्ट मिलने के लिए, कुछ परहेज है, मर्यादाएं हैं, उन्हीं को सूक्ष्म वतन में जाने का पासपोर्ट मिल सकता है, या सूक्ष्म वतनवासी बनने का पासपोर्ट मिल सकता है जिनके पास, जिन्होंने, जिनमें ये कुछ क्वालिफिकेशन हो। तो पहले चार जो मेन जो क्वालिफिकेशंस हैं वो है, पहली है पवित्रता की। पहली जो क्वालिफिकेशन है वो है पवित्रता की। जब हम ब्राह्मण बनते हैं, मनुष्य से ब्राह्मण बनते हैं, हम इससे पहले, बाबा का बच्चा बनने से पहले मनुष्य थे, मनुष्य का क्या अर्थ होता है? मनुष्य शब्द है मन के वश में, मनुष्य मन के वश में, अर्थात जो मन के वश में होता हो, जो मन के वश में रहता हो। मन किसके वश में रहता है? पांचों कर्मेंद्रियों के वश में। पांच कर्मेंद्रिय आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा। बाहरी त्वचा होती है, अंदरूनी त्वचा होती है। तो अंदरूनी त्वचा से हम टेस्ट भी करते हैं ना, देखने, आप देखना, पढ़ना, सुनना, खाना पीना, सूंघना, हाथ पैर से छूना, ये जिसके वश में, इनके वश में जो है आत्मा, मन उससे डायरेक्ट कनेक्शन है, ये कर्मेंद्रियों से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो मन के वश में जो है वो मनुष्य है, और मन किसके वश में है, कर्मेंद्रिय किसके वश में है? हद के वश में है। हद माना, एक तो देह, ये हमारी देह है ना, हम देह को देखते हैं, देह के बारे में पढ़ते हैं, देह के बारे में सुनते हैं, देह के बारे में बोलते हैं, देह के स्वाद की चीजें खाते हैं। तो देह एक ये हद है, इसकी लिमिटेशन है। देह के संबंध, संपर्क, जो हमारे संपर्क होते हैं ना, कॉन्टेक्ट होते हैं, वो हमारे मन जो है, इसी में यही बातें भरी रहती हैं, देह की, देह के संबंधों की, संपर्क की, और देह के स्वभाव संस्कार की। देहभान का स्वभाव क्या है? ये पांच विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और देहभान का संस्कार क्या है, आदत क्या है? सबसे पहली आदत है आलस्य। देखो सबसे पहला दुश्मन भी, हमारा दुश्मन कौन है? ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नंबर वन दुश्मन जो पुरुषार्थ में बाधा डालता है कौन सा है? आलस्य, है ना, अलबेलापन, केयरलेसनेस। चलो आज मुरली घर में ही पढ़ लेते हैं, है ना, आज चलो ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा तो खा लेते, क्या हो गया, थोड़ा सा केयरलेसनेस, है ना, अपना दोष ना देख के दूसरों में दोष दिखाई देना, ये भी देहभान का आदत है, संस्कार है। देखो दो तरह के होते हैं, हंस और बगला। हंस कैसा होता है? सफेद। बगला कैसा होता है? सफेद। तो हंस के सामने अगर 99 कीड़े पड़े हों और उसमें सिर्फ बीच में एक मोती पड़ा हो, उसको क्या नजर आएगा? उसको सिर्फ मोती नजर आता है, उसको कीड़े नजर नहीं आते, और मोती उठा के खा लेता है। और बगला भी सफेद है, किंतु वो क्या है, वो कैसा होता है, क्या करता है वो? उसके सामने 99 अगर मोती पड़े हों और एक बीच में कीड़ा पड़ा हो तो उसको क्या नजर आता है? सिर्फ कीड़ा नजर आता है। तो वो उठा के कीड़े को खा लेता है। ऐसे ही मनुष्य की दृष्टि होती है बगला दृष्टि, जो मन के वश में होता है ना बगला दृष्टि, उसको किसी के भी थोड़े से भी अवगुण, उसके अंदर 99 अच्छाई हो, किंतु एक अवगुण हो ना, उसको अवगुण ही दिखाई देगा, अच्छाई दिखाई नहीं देती। और ब्राह्मण की निशानी क्या है? किसी व्यक्ति में 99 अवगुण हो, सच्चे ब्राह्मण की निशानी है जिसमें 99 अवगुण हो किंतु एक गुण हो, उसको एक गुणी नजर आ जाए। तो सच्चा ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण शब्द जो है आया है वो है ब्राह्मण, जैसे ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा, ब्राह्मणा बेहद, माँ बेहद की माँ, सारे विश्व की माँ, सभी मनुष्य आत्माओं की माँ। तो ऐसे ही ब्राह्मण माना, ब्राह्मणा बेहद, मन, जिसका मन सदा बेहद में रहता हो, जिसकी बुद्धि और मन सदा बेहद में रहती हो, वो है ब्राह्मण। बेहद क्या है? आत्मा बेहद है, परमात्मा बेहद है ना? हमारा आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ बेहद संबंध है। बेहद का मतलब हमारा सर्व संबंध उसके साथ है, और ना खाली सर्व संबंध हमारे उनके साथ है, बल्कि हमारे वो संबंध, सर्व संबंध, हम कहीं भी रहते हुए, किसी जगह पर, किसी समय पर, किसी भी समय पर हम बाप से वो संबंध निभा सकते हैं। कहीं भी बाबा हमसे वो संबंध निभाता है, चाहे बाथरूम में हो, चाहे हम कहीं पे हो, आधी रात हो, जंगल में हो, बाबा हमसे वो संबंध निभाएगा। तो हमारा बेहद संबंध। और ड्रामा है, संसार रूपी ड्रामा सृष्टि के आदि मध्यांत की जो रचना है, जो आज का राज है, वो भी बेहद है। तो जिन बाबा के बच्चे जो हैं, ब्रह्मा ब्राह्मण जो हैं, उनके मैं कहता हूं ABCD, आत्मा, बाबा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा, जिनका इन चार चीज के उनकी बुद्धि रहती है, बुद्धि और मन लगा रहता है, उसी में लगा रहता है, वो ब्राह्मण। तो ये जो है पहली पहली निशानी, वो है पवित्रता। अगर हम पवित्र हैं, हमारी मन और बुद्धि पवित्र रहती है, तो हमें पासपोर्ट मिलता है सूक्ष्म वतन में जाने का, क्योंकि सूक्ष्म वतन जो है वहां पे कारोबारी शुद्ध संकल्पों की है, वहां अशुद्ध संकल्प जा ही नहीं सकता है। तो पहली जो निशानी है पवित्रता, पवित्रता जो है ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अभी आपने एक संडे की मुरली सुनी होगी, पीछे 2-3 संडे पहले थी, ब्राह्मण जीवन में पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अगर पवित्रता थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो ब्राह्मण जीवन का सांस ऊपर नीचे होने लगता है। आपने हम ब्राह्मणों में दैहिक पवित्रता तो आ गई है, ब्रह्मचर्य तो आ गया है, किंतु हम ब्राह्मणों में कौन सी अपवित्रता है जिससे हमारी अवस्था ऊपर नीचे होने लगती है? हमारी जो मुख्य अपवित्रता है वो लगाव है। किसी भी देहधारी से लगाव हो जाता है, वो अच्छा लगता है, वो अच्छी लगती है, उनके साथ बैठना अच्छा लगता है, उनकी क्लास अच्छी लगती है, उनके साथ हमारा बातचीत करना अच्छा लगता है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज उसके अच्छे लगते हैं, ये भी अपवित्रता है। लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव। जब किसी देहधारी के बारे में हमारा कुछ सोचते हैं तो हमारा बाबा से डिस्कनेक्शन है। झुकाव, किसी की बात सुनने की कान इधर जाती है तो हमारा बाबा से डिस्कनेक्शन हो जाता है। किसी के भी प्रभाव में आ जाओ, कितना भी कोई बड़ी अपने यज्ञ में हो चाहे बाहर हो, कोई आत्मा कितनी भी महान आत्मा हो, बाबा परमात्मा है, सुप्रीम है, सदा उसके प्रभाव में रहना, किसी भी देहधारी के प्रभाव में आना, यह भी अपवित्रता है। और किसी से बुद्धि पे टकराव खाना यह भी अपवित्रता है। फिर ड्रामा में, ये संसार रूपी नाटक में हमारे साथ हम सब एक्टर्स हैं, इसमें आपके लौकिक परिवार में, सेंटर्स में, भाई बहनों में, आपस में टीचर्स में कुछ ना कुछ भेदभाव होते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें हम क्या क्यों कैसे करते हैं। ये क्या क्यों कैसे करना भी अपवित्रता है। वैध संकल्प है ना, बाबा को ड्रामा मंजूर है, जो भी ड्रामा में कोई कुछ भी कर रहा है, कैसा भी एक्टर है, बाबा को मंजूर है, और हम उसमें क्या क्यों कैसे करें, तो क्या हुआ, ये पवित्रता है अपवित्रता। तो सबसे बड़ी जो पहली जो पासपोर्ट की निशानी है वो है पवित्रता। जितनी अधिक हमारे अंदर पवित्रता होगी उतना पासपोर्ट हमारा क्लीन एंड क्लियर होगा। पासपोर्ट की भी कैटेगरीज होती हैं। एक पासपोर्ट में ना हमें इमिग्रेशन चेक रिक्वायर नहीं होता, कहीं आपको चेकिंग नहीं करनी, टिकट लेनी है सीधे जाके सिक्योरिटी चेक करके ऊपर प्लेन में जाके बैठ जाना है। तो वो स्पेशल तरह का पासपोर्ट तभी मिलेगा हमको जब हमारी पवित्रता हायर डिग्री की होगी, खाली स्थूल नहीं, खाली कर्मणा में नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्माचारी, ऐसी पवित्रता हमको चाहिए। दूसरी जो पवित्रता चाहिए, दूसरा चाहिए शुद्ध सात्विक भोजन। एक जो सबसे बड़ा जो इंसान की रिक्वायरमेंट है जीते जी कि शरीर, बाबा ने कल कहा ना मुरली में, स्थूल शरीर हम खाते पीते रहे, यूं ही खाते पीते रहे, क्योंकि स्थूल शरीर तो है ना, इसको भोजन चाहिए ना, अन्न का भोजन, अन्न का हमारे मन पर जरूर असर पड़ता है। हमारा भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। शुद्ध माना बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना। सात्विक माना सात गुणों को बढ़ाने वाला। आत्मा के सात गुण होते सभी जानते हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। इसको इंग्लिश में याद करना हो तो फार्मूला है KPPLHBP, K फॉर नॉलेज, P फॉर प्योरिटी, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस एंड P फॉर पावर्स। ज्ञान से पवित्रता है। जितना अधिक हम ABCD का मनन चिंतन करते हैं, ABCD में ना ही मुरली, बाबा की मुरली, बाबा की मुरली में चार बातें होती हैं, आत्मा का परिचय, परमात्मा के बारे परिचय, आत्मा और परमात्मा का संबंध, बाप टीचर सतगुरु और बहुत सारे संबंध बाबा हर मुरली में कई बार डिस्कस करते हैं, हमें बताते हैं, गहराई से बताते हैं, अनुभूति कराते हैं, और डी फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और शिव बाबा इसका क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है। हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे, इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है उससे अच्छा हुआ है। आज सारे शरीर की बीमारियां कहां से आ रही हैं? मन की बीमारी कहां से आ रही है? शरीर की बीमारियां और मन की बीमारी कहां से आ रही है? इस मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, सारा टाइम पास्ट का चिंतन करते रहते हैं, पास्ट की बातें याद आती हैं। जैसे कई बार मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास एक एक भगोना है दूध का, उसमें एक लीटर दूध है, अभी हम कहते हैं एक लीटर दूध है उसमें, क्योंकि एक मक्खी गिर जाए तो क्या 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 बोलेंगे? दूध में मक्खी गिर जाए तो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? दूध में मक्खी है ना, ऐसे ही बोलेंगे, दूध दूध नहीं बोलेंगे, मक्खी है। अब वो दूध नजर नहीं आता है, मक्खी नजर आती है। ऐसे ही हमारे जीवन में कोई भी हमारे संबंधों में, चाहे वो घर में संबंध हो या सेंटर पे संबंध होते हैं या कहीं पर भी हमारे संबंध होते हैं, जहां हम कार्य व्यवहार करते हैं, जहां नौकरी करते हैं, वहां पर हमारे संबंध में एक बात भी निगेटिव हो जाती है ना, हमको वही याद रहती है, मेरे साथ इसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ। पर नहीं, बाबा कहते हैं ठीक हुआ है, क्योंकि तुमने भी पिछले जन्म में या इस जन्म में या पिछले जन्म में ऐसे कुछ कर्म किए जिसकी वजह से उसने आपको ऐसा कहा या ऐसा बिहेव किया या धोखा दिया, इसलिए इस ड्रामा में दोषी कोई नहीं। तो जितना इस बाबा ने कहा, मेडिटेशन क्या चीज है, राजयोग का मेडिटेशन क्या है? राजयोग का मेडिटेशन इंग्लिश में कहें तो मेडिटेशन इज लिविंग द ट्रूथ, इस सत्य, ये सत्य है, एबीसीडी सत्य है, ये ज्ञान सत्य है, शिव बाबा सत्य है, सत्य माना सदा अविनाशी है, कभी बदलने वाला नहीं है, एटर्नल है। सत्य की दो परिभाषा, दो बातें होती है परिभाषा में, एक तो वो सदा रहता है, अविनाशी होता है, एटर्नल होता है, दूसरा कभी बदलता नहीं, शिव बाबा कभी बदलता नहीं, सदा अविनाशी है। तो शिव बाबा सत्य है, आत्मा भी सत्य है, आत्मा परमात्मा का संबंध सत्य है, और सृष्टि रूपी ड्रामा भी सत्य है, कर्म सत्य है। एक बार हमने जो कर्म कर लिया कभी माफ नहीं हो सकता है, हमने जो कर्म किया वो माफ नहीं हो सकता है। योग से, मेडिटेशन से हम कर्म को, जो हमने बुरा कर्म किया उसको माफ नहीं होगा, उसका हिसाब किताब माफ हो जाएगा। मैं कई बार बताता हूं कि हिसाब किताब कितना होता है, अगर 100 वर्ष पहले किसी से आपने 1000 रुपया उधार लिया था, 100 रुपया उधार लिया था और आपने वापस नहीं किया, तो 100 साल के बाद इस जन्म में उसका ब्याज 20 करोड़ हो जाता है। 20 आप हिसाब लगा के देखना, 20 करोड़ 40 लाख रुपया हो जाता है। तो योग से क्या होता है, मेडिटेशन से क्या होता है, जो आज बाबा ने कहा बच्चे इतने पाप कर्म तुम्हारे सिर पर हैं, बहुत पाप कर्म है, इसके लिए दिन रात आपको योग चाहिए, दिन रात बाबा की याद चाहिए, बहुत योग अग्नि बहुत तीव्र चाहिए, तब विकर्मों का बोझा खत्म होगा। तो ये हमको ध्यान रखने का है कि ये जो योग से क्या होता है, योग से ये हमारा 20 करोड़ 40 लाख माफ हो जाता है। 100 रुपया तो हमको देना ही पड़ता है, समझ में आई ये बात आपको? कर्म कोई माफ नहीं हो सकता है। और वो भी तब हम पूरा 100% योग करें तो, जैसे बाबा ने कहा, बाबा की डायरेक्शन पे चल के, बाबा की श्रीमत पे चल के विधि पूर्वक योग करें, विधि पूर्वक बाबा को याद करें, चलते फिरते उठते बैठते, बाबा ने कहा रात दिन बाबा को याद करो, श्वासों, एक मुरली में था श्वासों श्वास बाबा को याद करो। हम 16,000 बार सांस लेते हैं एक दिन में, तो 16,000 बार हमें हर श्वास में बाबा की याद होनी चाहिए, ऑटोमेटिक याद होनी चाहिए, तब हमारे विक्रम विनाश होते हैं। और हमने आधा घंटा सुबह योग किया, आधा घंटा शाम योग किया, इसे योग अग्नि नहीं कहते हैं। आपने सुना होगा कई बार बाबा की मुरली में एक बार आया था पीछे, मन मना भव, निरंतर याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, निरंतर याद को, निरंतर याद हमें रहे बाबा की, उसे योग अग्नि कहते हैं। हम आधा कल्प काम चिता पे जले हैं, विकारों की चिता पे जलते रहे हैं, अब हमको ज्ञान चिता पे जलना है, निरंतर ज्ञान। ये जो बाबा की मुरली है, बाबा के महावाक्य, जैसे आज की मुरली थी सच का वार्तालाप, वरदान आज कितना डबल डबल नशा, बालक सो मालिक स्लोगन, आज का तपस्वी मूर्त का पॉइंट, ये बाबा की मुरली में और बहुत सारे पॉइंट्स थे आज। तो उन पॉइंट्स का मनन चिंतन मंथन सिमरण निरंतर चलता रहे। बाप के याद की लगन में लवलीन रहे निरंतर, तब हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो मैं पासपोर्ट की बात कर रहा था। पासपोर्ट की पहली बात है पवित्रता, दूसरी है शुद्ध सात्विक भोजन। बाबा की याद में भोजन बनाओ, बाबा की याद में खाओ, सात्विक, सात गुणों को, इन सात गुणों को बढ़ाने वाला भोजन। जितना जितना इस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते जाते हैं, पवित्रता बढ़ती जाती है, मन और बुद्धि पवित्र होती जाती। जितना मन और बुद्धि पवित्र होती, उतना मन शांत होता जाता। शांत माना सिर्फ वर्तमान के विचार आते हैं, पास्ट का चिंतन ना, पास्ट का चिंता ना भविष्य की चिंता। और प्रेजेंट में भी वर्तमान में भी आत्मा परमात्मा से कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करती है। यह है शांति की स्थिति, कि आत्मा फील करे परमात्मा के संबंध, एक एक संबंध को अनुभव करे और ड्रामा से साक्षी हो जाए। बाप का साथी और ड्रामा से साक्षी, ये स्थिति है शांति की। शांति इसे कहते हैं शांति, बाप के साथीपन की अनुभूति और ड्रामा से साक्षी दृष्टा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बाबा मेरे साथ है, और जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। ऐसी स्थिति हमारी हो, यह है शांति की स्थिति। और जब ऐसी शांति की स्थिति अनुभव होती है, इससे रूहानी प्यार पैदा होता है। रूहानी प्यार का क्या अर्थ है? रूहानी प्यार माना जो भी ड्रामा में हो रहा है, जो कोई भी कुछ कर रहा है, जैसे बाबा को सब स्वीकार है, बाबा हर बच्चे को कैसा भी हो, चाहे ब्राह्मण बच्चा हो, चाहे नॉन बीके हो, चाहे कोई आतंकवादी हो, डाकू हो, स्मगलर हो, बाबा उसको भी बराबर पालना देता है। आतंकवादी भी जाने से पहले, अटैक करने से पहले भगवान के पास जाता है, अल्लाह के पास जाता है, उसे बोलता आज मेरा सफल हो कार्यक्रम नहीं। और बाबा भी उसको लगता है, जैसे उसको लगता है कि बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहा, भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहा। तो ऐसी स्थिति, इसे कहते रूहानी प्यार, अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी वन इन द वर्ल्ड। मतलब बिना शर्त के आदर के साथ सबको स्वीकार करो और सबकी बराबर पालना देना, किसी से पार्शियलिटी ना करना, यह है रूहानी प्यार। और अगर मेरी बुद्धि इसमें उसमें उस किसमें लगी जाती है, उसकी तरफ इससे टकराव, उससे लगा, उससे झुका, उसके प्रभाव में, तो मैं बाबा का प्यार मेरे लिए है कि तुम इसको मैं अनुभव नहीं कर सकता। तो बाबा का प्यार अनुभव करने के लिए जब हम सबको माफ कर दें, सबको आदर से देखें, आदर से व्यवहार करें, तो बाबा का प्यार हम महसूस कर सकते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि बाबा की छत्र छाया में मैं हूं, बाबा मुझे प्यार करता है, बाबा के हम नजदीक पहुंच जाते हैं। तो बाप की छत्र छाया की अनुभूति करना, यह है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझसे दूर नहीं है, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा मेरा साथी है। जब हम सबको माफ कर देते हैं, अपने आप को भी माफ कर देते हैं और अपने आप को भी स्वीकार कर ले, दूसरों को भी स्वीकार कर लेते हैं जो जैसे हैं, जजमेंटल नहीं होते हैं, जजमेंटल, बाबा जजमेंटल नहीं है, सुप्रीम जस्टिस अब जजमेंटल नहीं है, हम जजमेंटल हो जाते हैं। ये भाई सुधरने वाला नहीं है, ये बहन सुधरने वाली नहीं है, ऐसा है, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसे, तो हम बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर हमें बाबा से जुड़ना है, बाबा की छत्र छाया में आना है, तो ये ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है, ये कलप पहले पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा, ऐसा ही होगा, हूबहू रिपीट होगा। जैसे आज बाबा ने कहा ड्रामा में कुछ भी चेंज नहीं होता है, नाटक में चेंज हो जाता है किंतु ड्रामा में चेंज नहीं होता है। तो ऐसा हमको प्रैक्टिकली जब अनुभव करेंगे, तब हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करेंगे। और अतीन्द्रिय सुख माना इंद्रियों से ऊपर का सुख, ना देखने का सुख, पढ़ने का सुख, खाने का सुख, बोलने का सुख, सूंघने का सुख, सुनने का सुख, छूने का सुख, इनसे ऊपर। आत्मा फील करती है कि बाबा मेरे साथ है। और आनंद माना, आनंद माना बंधन, आत्मा देह और देह की दुनिया के बंधन से पार परमात्मा की याद में खो जाती है, परमात्मा की याद में लवलीन हो जाती है, इसको बोलते हैं आनंद। ये स्थिति ऐसे आत्मा सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में चली जाती है। अतीन्द्र सुख में भी क्या होता है, आत्मा क्योंकि ड्रामा इस दुनिया में है, सूक्ष्म वतन जो है उसमें ड्रामा नहीं है, वहां पर आत्मा फील करती मैं सूक्ष्म वतन में हूं। और आनंद जो है वो स्थिति जिसमें आत्मा परमात्मा के प्यार में खो गई है, ऐसा फील होता है कि आत्मा परमात्मा की गोद में, ऐसा फील करते हैं हम अपने आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ परमात्मा की गोद में खोई हुई है। और फिर है शक्ति, शक्तियां, जब ये ऐसा हो जाता है परखने की शक्ति आ जाती है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति आ जाती है, पहाड़ को राई बनाने की शक्ति आ जाती है, समेटने की शक्ति आ जाती है। जब समेटने की शक्ति आ गई, आत्मा परमात्मा से कंबाइन हो गई, तो सहन करने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है, सामना करने की शक्ति आ जाती है, सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। तो इस तरह से सातों एनर्जी का कनेक्शन है आपस में। तो पहला जो मैंने बताया था प्रेस पासपोर्ट के लिए, पहली पवित्रता, जितनी ज्यादा पवित्रता होगी, और ऐसा भोजन हम खाएं जो इन सात गुणों को बढ़ाने वाला हो, ज्ञान को बढ़ाने वाला, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति को बढ़ाने वाला, फल, सब्जियां, अंकुरित दलिया, रोटी, सब्जी, दाल और दूध। रासिक भोजन कौन सा था, आलस पैदा करने वाला, पराठा, पकौड़ा, समोसा, मिठाइयां जो खाते हैं ना, ये जो है आलस पैदा करने वाला। तामसिक भोजन कौन से होते हैं, बहुत सारा चाय पीना, कॉफी पीना, है ना, बाबा ने कहा ना बहुत चाय पीना भी क्या है, नुकसान करता है ना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये तामसिक होते हैं, बहुत कैफीन होती है उसके अंदर, अचार खाना, बहुत सारी मिर्चें खाना, नॉनवेज खाना, लहसुन प्याज तो सब तथा सबको पता तामसिक है, ये सब तामसिक भोजन में। कुछ ऐसे भोजन और भी होते हैं जो जैम जो होते हैं जो प्रिजर्व करते हैं, वो सब नहीं खाने चाहिए हमको। तो शुद्ध सात्विक भोजन बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना। कल भी मुरली में था कि बाबा की याद में हम भोजन करें, है ना। तो फिर तीसरी जो बात है वो है सत्संग। बस बाबा और बाबा की मुरली दो ही चीज सत्य है, बाकी सब असत्य है। बाबा और बाबा की मुरली का संग, किसी भी देहधारी का संग नहीं, कोई ये जो आजकल जो भाई बहन पढ़ते हैं व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, व्हाट्सएप देखते रहते हैं, इंटरनेट पे रहते हैं, ये सब, ये भी एक तरह की पवित्रता है। मैंने भी एक बार व्हाट्सएप मेरे मोबाइल में लिया था, मैं देखा कोई गुड मॉर्निंग करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उसी पे मेरा 15 मिनट खराब होने लगा, मैंने तुरंत बंद कर दिया। कोई केक बेचता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, जवाब नहीं दो तो लगता है कि आप वो है उनके ना। तो इसलिए ये भी टाइम वेस्ट ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए, इसका भी संग नहीं करना चाहिए, फेसबुक पे रहना नहीं करना चाहिए। हमारे संग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बाबा सत्य है और मुरली सत्य है। चौथा दैवी गुणों की धारणा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बातें कभी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना, लोभ करना, मोह करना, किसी से अटैचमेंट में आना कभी नहीं करो, चिंता मत करो, क्योंकि एक बार हम गलत काम करते हैं, गुस्सा करते हैं, कई दिन तक हमारा योग अच्छा नहीं लगेगा, हम उदास हो जाते, कई दिन तक हमारा योग अच्छा लगेगा, मुरली हमें समझ नहीं आएगी। इस सत्यता, पवित्रता, निर्भयता जो है, ये गुण है ना दैवी गुण, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, ये हम प्रयोग करें। तो पासपोर्ट मिलने के लिए चार चीजें बहुत आवश्यक है। जब पवित्रता की हमारी डिग्री हमारे पास आ जाती, हम भोजन में पवित्र भोजन लेते, शुद्ध सात्विक भोजन लेते, सत्संग करते, बाबा की रोज मुरली सुनते, बाबा की याद में रहते, बाबा का संग रहते, और चौथा दैवी गुणों की धारणा, हमें हमारा रिकॉर्ड बन जाए कि हमने पिछले एक साल से गुस्सा नहीं किया, हमने एक किसी बात की हमें चिंता नहीं होती है, कभी हमें डर नहीं लगता है, कभी हम किसी से जलन हमारे मन में नहीं है, किसी से ईर्ष्या द्वेष हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर सबके लिए प्यार है, सरल स्वभाव, नम्रता, ईगो नहीं है, अहंकार जरा भी नहीं है, मधुर बोलते हैं, दूसरों की गलतियों को देखते नहीं है, माफ कर देते हैं। तो जब हमारा ऐसा रिकॉर्ड बनता चला जाए, धीरेता, पेशेंस है हमारे अंदर, जल्दीबाजी जरा भी नहीं है, गंभीर है, अपने सीरियस, अपना जो काम मिला है बाबा से विक्रम विनाश करने का, उसको हम बहुत सीरियसली करते हैं, सहनशील हैं। बाबा ने कल कहा ना मुरली में, याद होगा, जो अच्छे होते हैं उनको ही सुनना पड़ता है, उनको ही सहन करना पड़ता है। तो अगर आपको सहन करना पड़ रहा है इसका मतलब आप बहुत अच्छे हैं, सुनना पड़ता है आपको बहुत, आप बहुत अच्छे हैं, बाबा की नजरों में अच्छे हैं। दुनिया की नजर में भले अच्छे ना हो किंतु बाबा की नजरों में अच्छे। और फिर जो है चार नियम, जो ये चार नियम फॉलो करता है वो बाबा के पासपोर्ट का अधिकारी है, सूक्ष्मतम जाने का अधिकारी है। पहला जो है नियम है वो है अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला। अमृत वेला हमारा 45 मिनट ऐसी स्थिति का हो जैसे बस बाबा के पास सूक्ष्मतम में खो गए, 45 मिनट से 30 मिनट सूक्ष्मतम में रहो, 10-15 मिनट परमधाम में जाओ, टाइम वेस्ट ना हो। हम लड़ाई कर रहे हैं सूक्ष्मतम में जाने के लिए, नहीं, इतना पावरफुल अमृत वेला होना चाहिए, क्योंकि अमृत वेले में ही विक्रम विनाश हो सकते हैं। सारा दिन आप कितना मर्जी योग कर लो विक्रम विनाश नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सुबह सुबह जब हम उठते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 2 या 3 होती है, हम डेल्टा रिदम से उठते हैं, और शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी 0 है, उसको संकल्प चलते ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा की सिर्फ 1 है, ब्रह्मा बाबा को एक ही संकल्प है कि मेरे बच्चे तैयार हो तो हम घर चलें, परमधाम वापस जाएं, एक ही संकल्प है, दूसरा संकल्प नहीं है। हमारे जब 2 संकल्प होंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी 2 होगी, तो हम सूक्ष्म, हमारा कनेक्शन लग जाता है, हम बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं तुरंत सूक्ष्म वतन में। और हमारे विक्रम विनाश कब होते हैं? जब हम बाबा की याद में खो जाएं, देह का बांध बिल्कुल भूल जाएं, मतलब एक संकल्प जब सिर्फ बाबा रह जाता है तो हम परमधाम पहुंच जाते हैं, संकल्प चलने बंद हो जाते हैं, और वो स्थिति में हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं। ये 5 विकार जो बेसिकली काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी स्मृतियां, ये हमारे अंदर जो भरी पड़ी है, ये जन्म की भी पिछले जन्मों की भी भरी हुई है, वो डिलीट होने लगती है। तो 1 सेकंड में वहां, एक अभी हम क्या करते हैं, 1 सेकंड में जाते हैं सूक्ष्म वतन में, एक सेकंड में देखा बाबा को, देखा और एक बस बहुत अच्छा लगा, तुरंत नीचे आ जाते हैं। इसमें ताली बजाने की बात है क्या? ये तो हमारी गलत बात है ना। आप दूध आपको गर्म करना हो, आप गैस पे रखो, ऐसे रखो और ऐसे उतार लो, दूध गर्म हुआ क्या? हुआ क्या? नहीं हुआ ना। कीटाणु मर गए क्या? पीने लायक दूध हो गया? नहीं हुआ ना। तो उबलना चाहिए ना, 5-10 मिनट रखना पड़ेगा ना, तभी तो उबलेगा दूध ना, तभी तो पीने लायक बनेगा ना। हमारा जीवन में परिवर्तन इसलिए नहीं होता है। तो पहले बात है अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला। दूसरा मुरली, मुरली बाबा के घर में जाके सुननी चाहिए, घर में नहीं, इंटरनेट पे नहीं, पेपर पे नहीं, भले घर में पढ़ो किंतु फिर बाबा के सेंटर में जाओ, कैसे भी करके जाओ, कुछ भी हो जाए करके जाओ, अगर 10 किलोमीटर दूर है सेंटर तो भी जाओ। मेरा सेंटर 8 किलोमीटर दूर था घर से, दिल्ली में जब हम रहते थे आज से 31 साल पहले, तो मेरा सेंटर 8 किलोमीटर दूर था सेंटर से, और मैं 5 हॉस्पिटल में कंसल्टेंट था, फिर भी मैंने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। मुरली सेंटर पे जाके सुनने का महत्व है, वो रिकॉर्डिंग रूम है, वहां रिकॉर्ड होता है। और इसमें मैं कुछ भी करने, मेरा नियम, हमने एक नियम और अपनाया कि कुछ भी डालने से पहले मुंह में, पानी पीने के अलावा कुछ भी और मैं मुंह में डालूंगा जब तक मुरली ना सुन, पहले आत्मा को भोजन दूं उसके बाद शरीर को भोजन देना, ऐसा पक्का नियम बनाओ, सारे काम छोड़ के मुरली सुनने जाओ। अभी आखिरी समय आ गया, कल बाबा ने कहा कि अभी हम मंगल मिलन मनाते रहेंगे, ये मिलना बिछुड़ना इसमें दुख होता है ना, कल बाबा याद है मुरली, अभी वो समय आएगा जब हम सदा ही मिलन मनाते रहेंगे, मतलब अभी बाबा से हम अव्यक्त मिलन मनाते रहेंगे, हम सूक्ष्म वतनवासी बन जाएंगे, सभी निरंतर बाबा से मिलन मनाते रहेंगे, यहां रहते देह में रहते भी सूक्ष्म वतनवासी बन के रहेंगे। तो अमृत वेला, मुरली, तीसरी बात अटेंशन, अटेंशन माना सारा दिन ये अटेंशन रहे बाबा ने क्या कहा मुरली में। उसमें 4 बातें आती है अटेंशन में, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण। मनन माना रिवाइज करो बाबा ने आज क्या कहा, एक एक पॉइंट को रिवाइज करो। चिंतन, गहराई में जाओ बाबा ने मुझे कहा मुझे बनना है। मंथन, इसका जूस निकालो। कैसे बनूं बाबा ने उस दिन ये कहा था, आज ये कहा, आज तीन दिन से बाबा ये कह रहा है, बाबा मैं कैसे अपने जीवन में लाऊं। उसमें हमारे मगन हो जाते हैं, बाबा से सोल्यूशन मिलता है। बच्चे तुम इसका, मेरे कहने का मतलब ये है, बाबा इसे टच करता है बुद्धि में। सिमरन में ना उसको कार्य में लगाओ, सिमर सिमर सुख पाओ, वो फिर रिकॉर्ड हो जाता है। कार्य में लगा ना, रिकॉर्ड हुआ तो उससे हमारे अंदर परिवर्तन आता है। तो ये सारा दिन मनन चिंतन हर काम करते करते भी कर सकते हैं। मैं पेशेंट देखते देखते भी करता हूँ, आईसीयू में भी करता हूँ। और फिर सोने के पहले वेंटिलेशन मतलब अपने मन की, अपनी भावनाओं को बाबा से हर चीज व्यक्त कर लो। पहली बार लेटर लिखो बाबा को सच्चाई से, सुबह से लेकर आज रात तक क्या हुआ। दूसरा लेटर क्यों लिखें? कई लोग, हम लोग बाबा के सामने बैठ के ऐसी बातचीत कर लेते हैं, वो हम बाबा तक नहीं पहुंचता, क्योंकि बाबा सूक्ष्म वतन में बैठा है, वहां शुद्ध संकल्प भी पहुंच सकते हैं। हमारे वो अशुद्ध संकल्प होते हैं, बाबा मुझसे गलती हो गई, बाबा उसने मुझे ऐसा कहा, मेरे से ऐसा हो गया, वो नहीं पहुंचता है। जब हम लिखते हैं तो भावना उसमें निकलती है, वाइब्रेशन बाबा तक पहुंच जाते हैं। इसे लिखना जरूरी है, साइन करो, फिर बाबा को दे दो। बाबा का हॉटलाइन नंबर है 000, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, आज साल में जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाय 0। तो बाबा के पास वो लेटर पहुंच गया। फिर याद का चार्ट भरो, घंटे घंटे याद का चार्ट रखो, सभी को घंटे घंटे याद का चार्ट रखना चाहिए, एक घंटे में कितने मिनट बाबा की याद रही। फिर तीसरा, पूरी मुरली पढ़ो। ये जो मैं बातें बता रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकली दिल वालों के साथ देखा, हार्ट पेशेंट जो हमारे पास आते हैं ना, कैसे उनका परिवर्तन होता है, कैसे उनके ब्लॉकेज निकलते हैं, कैसे उनके मन बुद्धि स्वच्छ होती है, तो वो प्रैक्टिकली उनके अंदर परिवर्तन आता है। मैं खुद भी करता हूं। फिर पूरी मुरली पढ़ते हैं और फिर 3 मिनट बाबा को याद करके 10 बजे तक सो जाओ। ये नियम जो करता है ना, चार बातें, वो फिर प्रैक्टिकली उसका अमृत वेला भी अच्छा होता है। अब हम आते हैं सूक्ष्म वतन। ये तो हो गए चार बातें, जो चार और चार आठ परहेज हो गए ये पासपोर्ट मिलने के लिए। वीजा कैसे मिलेगा? वीजा मिलता है जब हमारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। टूरिस्ट वीजा तो हमको शुरू से मिल जाता है, ऊपर नीचे आने जाने का, 1 सेकंड के लिए गए, 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड गए, 1 मिनट चले गए सूक्ष्म वतन में, वो तो हमें शुरू से अथॉरिटी मिल जाती है। बाबा जैसे हमको अडॉप्ट करता है, ब्राह्मण बनाता है, हमारा मिल जाता है। किंतु हमें पास वीजा कैसे मिले? वीजा माना हमें छुट्टी मिल जाए अब जाने की। हम कुछ देर रह के आए ना, 10 मिनट तो रह के आए, 20 मिनट तो रह के आए। बाबा कहते इतने रहो कि सूक्ष्म वतन वासी बन के, यहां काम करते भी सूक्ष्म वतन वासी बन के रहो। तो सूक्ष्म वतन है क्या चीज? सूक्ष्म वतन जो है वो ब्रह्मा शिव बाबा ने, जब बाबा आए तब उन्हें स्थापन किया। सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, शिव बाबा का दिल है। शिव बाबा का दिल तख्त है। शिव बाबा कौन है? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, रूहानी प्रेम का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, सर्वशक्तिमान है। तो बाबा जो है, बाबा की जो दिल है, बाबा की दिल, जैसे बच्चे मां के दिल में बच्चा कैसा होता है? बच्चा 50 साल का हो गया, 30 40 साल का हो गया, किंतु मां को वो बच्चा, वही छोटा सा बच्चा श्री कृष्ण जैसा, पैर में पजे पहने हुए, सिर पे मुकुट लगाए हुए, वही दिखाई देता है। बच्चा गुस्सा करता है तो भी मां को गुस्सा नहीं नजर आता है, मेरा बच्चा ये है। ऐसे जो बाबा है, बाबा को हम, बाबा ने हमको देखा है, परमधाम में भी देखा है, परमधाम में आत्मा के रूप में भी देखा है, जब हम लास्ट कलश में फरिश्ते तो भी देखा है, और बाबा ने हमको देवता रूप में भी देखा है। तो बाबा के मन में, बाबा के दिल में क्या नजर आता है? हमें देख करके उसको हमारा बचपन याद आता है, हमारे सत्यु का, देवी देवता का सीन याद आता है, लास्ट कलश में फरिश्ते का सीन याद आता है। तो बाबा के दिल में हमारा फरिश्ता स्वरूप है, बाबा के दिल में हमारा देवता स्वरूप है, और बाबा के दिल में हमारा संपूर्ण पावन सत्व प्रधान ब्राह्मण स्वरूप है। तो सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, शिव बाबा की दिल है, दिल तख्त है। आत्मा का दिल कितना बड़ा है आपने सुना होगा मुरली में, दिल कहां होता है? एक दिल तो, ये तो फिजिकल दिल है, बॉडी का दिल है, दिल आत्मा में होता है। दिल क्या है आत्मा का? आत्मा का दिल क्या है? ये जो यहां पर हाइपोथैलेमस के बीच में आत्मा है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, उससे 7 एनर्जी निकलती रहती है, ये ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, जहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा है उसको हम दिल कहते हैं, आत्मा का दिल। ये है आत्मा का दिल, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद, ये दिल है। इस दिल से जो बनता है वो बनता है विवेक, परखने की शक्ति। जितना अधिक ज्ञान होगा, जितनी अधिक एबीसीडी होगी, इतनी बुद्धि, मन बुद्धि पवित्र होगा, शांति होगी, रूहानी प्रेम होगा, अतिद्रिय सुख होगा, आनंद होगा, उतनी हमारी प्रखने शक्ति कैसी होगी? एक्यूरेट होगी, राइट रॉन्ग को परखने की। और फिर उससे बनती निर्णय शक्ति, उसको हम बुद्धि, प्रॉपर बुद्धि कहते हैं या दिव्य निर्णय शक्ति कहते हैं। और उसके बाहर होता है हमारा चित्त। जो बाकी छह शक्तियां हैं, पहाड़ जैसी बात को राई बना देना, विस्तार को सार में ले आना, समेट लेना, सहन करना, समाना, सामना करना, सहयोग करना, ये छह शक्तियों से मिलकर बनता है हमारा चित्त, सबकॉन्शियस माइंड। अगर हमारी दिल में कोई देहधारी आ जाता है, अपनी देह आ गई या कोई और देहधारी आ गया, उसे दिल लग गई, दिल कहते हैं दिल लग गई, दिल लगे में वो हमारे दिल में समा गया, कॉन्शियसनेस, दिल को हिंदी में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, वो हमारे दिल में आ गया, तो हमारा क्या होगा? विवेक क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा, उसका लगाव की बातें बुद्धि में आएंगी, उससे झुकाव आएगा, उससे टकराव आएगा, है ना? या कोई चीज हमें अच्छी लग गई वो भी दिल में चली गई, उसको कुछ हो गया, उस चीज को टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कार हमने नहीं ली वो दिल में चली गई, है ना? अब उसको कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हमारे दिल में क्या होगा? विवेक खराब हो जाएगा, निर्णय शक्ति विवेक कंफ्यूज हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो जाएगी, चित्त चंचल हो जाएगा। फिर छोटी बात बड़ी नहीं होगी, फिर बड़ी बात छोटी नहीं होगी, छोटी बात बड़ी हो जाया करेगी, समेट नहीं पाएंगे, सहन नहीं होगा कुछ भी, समा नहीं पाएंगे, सामना नहीं कर पाएंगे कोई बात का, सहयोग नहीं कर पाएंगे। किंतु दिल में अगर बाबा है, बाबा माना क्या? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सदा सत्य, सदा पावन, सदा शांति, सदा रूहानी प्रेम, सदा अतिंद्रिय सुख, सदा आनंद, सदा शक्तियां, सदा शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, अगर बाबा दिल में है तो क्या होगा? हमारा विवेक ईश्वरीय हो जाएगा, बुद्धि दिव्य हो जाएगी, चित्त शांत हो जाएगा, एकाग्र आनंदमय हो जाएगा। जैसे बाबा कहता है सच्चित आनंद स्वरूप, दिल में सत्य है तो चित्त आनंद स्वरूप है। तो ऐसा जब हमारा दिल होगा तो बाबा का दिल कितना बड़ा है? ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर। तो जो बाबा का दिल तक सूक्ष्म वतन कितना बड़ा है? बाबा कहते हैं तुम सूक्ष्म वतन में सैर भी कर सकते हो, इस पे सो भी सकते हो, खाना भी वहीं खा सकते हो, जो इतना बड़ा सूक्ष्म वतन है। अभी तक एक ही एग्जाम्पल बना है, बाबा के दिल में कौन? ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा के दिल में कौन? शिव बाबा। तो ये सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, शिव बाबा का दिल तख्त है और उस पे ब्रह्मा बाबा बैठा है, अवेक्ट ब्रह्मा बाबा बैठा है। सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म शरीर माना, सूक्ष्म शरीर माना पवित्र बुद्धि पवित्र मन, पवित्र बुद्धि पवित्र मन और पवित्र संस्कार। ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ करके अपने मन बुद्धि संस्कारों को पावन बनाया 33 साल में, सत्व प्रधान बनाया और बाबा सूक्ष्म वतन में जाके बैठ गए। अब हमको ऐसा इस ज्ञान योग से, दिन रात ज्ञान योग धारणा सेवा से अपने मन बुद्धि को पवित्र, संस्कारों को पवित्र बना के सूक्ष्म वतन में जाके बैठना है और विक्रम विनाश करने, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, चित्त जिसे कहते हैं, उसको हमें आनंदमय बनाना पड़ेगा। जब जितना हमारा बाबा दिल में रहेगा, मेरा बाबा दिल में रहेगा, देहधारी को सब निकाल दो, देह के संबंध, देह के स्वभाव, संस्कार, देह के पदार्थों को दिल से निकाल के बाबा को बिठा के, तो फिर हमारा विवेक ईश्वरीय हो जाएगा, बुद्धि दिव्य हो जाएगी, चित्त शांत एकाग्र आनंदमय हो जाएगा। और फिर हमारी स्मृतियां, मन, स्थूल मन, जो हमारा सूक्ष्म, हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो एक्टिव हो जाएगा। तो स्मृतियां जागृत होंगी, सत्युग वाली स्मृतियां जागृत हो जाएंगी, फरिश्ता स्वरूप की स्मृतियां जागृत हो जाएंगी, सब अंदर है हमारे, वो स्मृतियां जागृत हो जाएंगी, संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की स्मृतियां जागृत हो जाएंगी, और उससे फिर हमारी वृत्ति रूहानी हो जाएगी, उससे हमारी भावनाएं 100% पॉजिटिव हो जाएंगी और संकल्प पावन, श्रेष्ठ, शक्तिशाली और कल्याणकारी बनेंगे, जिससे हमारा ये शरीर भले पुराना शरीर साथ देगा, जैसे दादी जी का, दादी जानकी जी का, दादी रतन मोहिनी एग्जाम्पल है, दादी गुलजार जी का लाए हमारे बीच, पुराना रथ होते भी कैसे साथ देता है, तो शरीर भी साथ देगा, हमारी कर्मेंद्री हमारे वश में हो जाए, कर्मेंद्री जीत, माया जीत, प्रकृति जीत बन जाएंगे, विकर्मा जीत हो जाएंगे, और साथ साथ हमारे जो वाइब्रेशन बाबा दिल में है, तो बुद्धि और मन से होता हुआ वाइब्रेशन सारे विश्व की मनसा सेवा करेगा। तो ये जब हमारे ऐसे विक्रम विनाश होते जाएंगे, सत्य द्वापर और कलयुग के जब हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, विक्रमा जीत बन जाएंगे, तो ये वीजा होगा। फिर हम सूक्ष्म वतन में लंबा समय रह, जितने जितने विक्रम विनाश होते जाएंगे उतना हम सूक्ष्म वतन में ज्यादा समय रह पाएंगे, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा। बाबा ने पिछली 31 तारीख के मुरली में कहा था, ऑर्डर करो मन को, एक घंटे की प्रैक्टिस करो, वहीं बैठ जाओ, वहीं टिक जाओ, ये नहीं कि मन, इसकी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो जितना हम ये प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, विक्रम विनाश करते जाएंगे, ये हमें पासपोर्ट पहले मिल गया, वीजा हमको मिल जाएगा, फिर जब चाहे, जितना समय चाहे, जहां चाहे, हम बाबा सूक्ष्म वतन में जाके बैठ जाएंगे। भले यहां विनाश होगा, हाहाकार होगी, पांचों प्रकृति के तत्व तांडव नृत्य करेंगे, चारों तरफ विनाश हो रहा होगा, किंतु हमें, हम इस सूक्ष्म वतन के पार, इसके बाहर, सूक्ष्म सॉरी, ये हमारा जब पूरा मन कॉन्शियस हो जाएगा, फरिश्ता माना इसका मन 100% कॉन्शियस है, ना सबकॉन्शियस है ना अनकॉन्शियस है, पूरा मन हमारा स्वच्छ हो गया है, पूरा कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाएगी, तो इसके पहली तरफ क्या है, सत्युग है, सुखधाम है, तो हमें सत्युग की सीन सीनियर नजर आने शुरू हो जाएंगे, वहां विनाश हो रहा होगा यहां पर, और हम कहां होंगे, या तो सूक्ष्म वतन में होंगे या सत्युग के सीन सीनरी देख रहे होंगे, हमें साक्षात्कार हो रहे होंगे, लोग कहेंगे हाय मरा, और हम कहेंगे मैं अपने राज्य में गया, अपने घर में और राज्य में गया, दुनिया वाले रोएंगे, हाहाकार मचेगा, और हम कहेंगे, हम सब घुंघरू पहन के नाचेंगे, बाबा कहते हैं हम घुंघरू पहन के नाचेंगे, माना हम खुशी खुशी में रहेंगे। तो ऐसा तो सूक्ष्म वतन वासी बनने का पासपोर्ट है। चार बातें लास्ट में बता देता हूं दोबारा से, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, और चार नियम है, पावरफुल अमृत वेला, रोज मुरली सेंटर पे सुनना, सारा दिन अटेंशन रखना, मनन चिंतन मंथन सिमरण, और क्या, वेंटिलेशन, सोने के बाद लेटर लिखो, चार्ट भरो, मुरली पूरी पढ़ो, बाबा को याद कर सो जाओ, और फिर वीजा है अपने विक्रम विनाश करना। जितने विक्रम विनाश होते जाएंगे उतना हम पावरफुल, हमारा ज्यादा समय हम बाबा के पास, पहले टूरिस्ट वीजा मिलेगा, फिर पूरा परमानेंट वीजा मिल जाएगा। ठीक है, ओम शांति।